नमस्कार भारत, आज है 22 मई, दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हवाई हमलों में अफगान तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत की संभावना। मिस्र की सेना ने हादसे का शिकार हुए इजिप्ट एयर के विमान के मलबे की पहली तस्वीरें जारी की।
À cet instant, je vous parle. Toutes les hypothèses sont examinées.
अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की यौन प्रताड़ना को लेकर पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। मिलिएगा इस साल CBSE की 12वीं की टॉपर सुकृति गुप्ता से।
मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और रिजल्ट मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, भगवान की वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे हूँ।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले BBC समाचार विस्तार से।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। अमरीकी सेना के अधिकारियों का कहना है कि अफगान तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी हवाई हमले में मारे जाने की संभावना है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा के करीब हुए इस हमले में कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमले के वक्त मंसूर एक लड़ाके के साथ वाहन में सवार था। मंसूर ने बीते साल जुलाई में अफगान तालिबान की कमान संभाली थी। पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंसूर शांति, सुरक्षा बलों और आम लोगों के लिए खतरा था। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को विमान हादसे को लेकर अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। अधिकारी विमान के मुख्य हिस्से और ब्लैक बॉक्स की तलाश में जुटे हैं। मिस्र की सेना ने विमान के मलबे की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें जैकेट और विमान की सीट की तस्वीरें शामिल हैं। इजिप्ट एयर का विमान पेरिस से काहिरा जाते वक्त भूमध्य सागर में गिर गया था। हादसे में विमान में सवार रहे सभी 66 लोगों की मौत हो गई थी। सोमालिया की सरकार ने चरमपंथी संगठन अल शबाब के खिलाफ अमरीका के ड्रोन हमले का समर्थन किया है। हालिया बरसों में अमरीकी ड्रोन हमले में अल शबाब के कई प्रमुख सदस्य मारे गए हैं। सोमालिया के विदेश मंत्री अब्दुल सलाम उमर ने BBC से बातचीत में ड्रोन तकनीक को कारगर बताया। उन्होंने कहा,
We do support the drone strikes. There is a precision there.
हम ड्रोन हमले का समर्थन करते हैं, इसमें नुकसान कम होता है। हम मानते हैं कि ड्रोन तकनीक काफ़ी प्रभावी है। दूसरे देशों में इसे लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन सोमालिया में इस पर कोई विवाद नहीं है। ये थे सोमालिया के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। मोदी अपनी यात्रा के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में चक्रवात रुआनू से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। राहत काम में लगे अधिकारियों ने प्रभावित इलाके के करीब 5,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। बांग्लादेश के कई बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है। पूरे देश में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। चक्रवात की वजह से हुए नुकसान का सही अंदाजा अभी नहीं हो पाया है। चक्रवाती हवाएं अब कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन भारी बारिश जारी है। यमन में पिछले साल अगवा कर लिए गए प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर अब्दुल कादिर अल गुनैद आजाद हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल को हूती विद्रोहियों ने उनके घर से अगवा कर लिया था। वो हूती विद्रोहियों के आलोचक माने जाते हैं। चिली में राष्ट्रपति मिशेल बशले के संसद में संबोधन के दौरान वाल्पराइजो में हिंसा भड़क गई। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सेना का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर उनके हवाई हमलों में अफगान तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की संभावना है। अख्तर मंसूर और उनके एक अन्य सहयोगी को निशाना बनाने के लिए अमरीकी सेना ने कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पूरी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, आपके पास और क्या जानकारी है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया?
देखिए, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि उन्होंने शनिवार को अफगान तालिबान के नेता मुल्ला मंसूर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब हवाई हमला किया है। अमरीकी अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये हमला राष्ट्रपति ओबामा की मंजूरी मिलने के बाद किया गया, और चूंकि ये हमला अफगानिस्तान की सरहद के बाहर था, इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति ली गई। पेंटागन का यह भी कहना है कि हमले का अंजाम क्या हुआ वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अमरीकी मीडिया में कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि हमले में मुल्ला मंसूर और एक और शख्स जो उनके साथ गाड़ी में था दोनों ही संभवतः मारे गए हैं। इन अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये अमरीकी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरहद के अंदर हुआ है, और पेंटागन के अधिकारी निश्चित तौर से कुछ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एक तो ये इलाका काफी दूर दराज का है, अंदरूनी इलाका है, और पहले भी कई बार हमलों के बाद जो अंदाजा लगाया गया है वो गलत साबित हुआ है, इसलिए वो काफी संभल कर इसमें कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच मुल्ला मंसूर की मौत हुई है तो अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों ही के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी।
ब्रजेश, मुल्ला मंसूर की अगर मौत हो गई है तो अफगान तालिबान के लिए कितनी बड़ी क्षति है?
देखिये, मुल्ला मंसूर अफगान तालिबान के साथ 90 के दशक से ही जुड़े रहे हैं। पेंटागन के अनुसार मुल्ला उमर की मौत के बाद, जब से उन्होंने कमान संभाला उसके बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कई हमले किए जिनमें हजारों अफगान नागरिक, अफगान सुरक्षा सैनिक और अमरीकी सैनिक मारे गए हैं, और वो उनमें इनकी खासी भूमिका बताई गई है। अब तक जो बयान आए हैं उनके अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक का कहना था कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जो शांति वार्ता की कोशिशें हो रही थी उसकी राह में मुल्ला मंसूर बहुत बड़ी रुकावट थे, और उन्होंने कई अफगान तालिबान नेताओं को बातचीत में शामिल होने से रोका था। लेकिन मीडिया में छपी खबरों के अनुसार उनके नेतृत्व में अफगान तालिबान के अंदर काफी फूट भी पड़ी थी, खासतौर से पाकिस्तान के साथ जो उनके कथित संबंध थे उनको लेकर।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्र की सेना ने गुरुवार को हादसे का शिकार हुए इजिप्ट एयर के विमान के मलबे की पहली तस्वीरें जारी की हैं। विमान का मुख्य हिस्सा और ब्लैक बॉक्स अब भी नहीं मिल सके हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि विमान हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
मिस्र की सेना ने विमानों में आपात स्थिति में पहने जाने वाली जैकेट, कुर्सियों के हिस्से और इजिप्ट एयर के लोगो वाले कुछ दूसरे सामानों की तस्वीरें जारी की हैं। ये सामान गुरुवार को पेरिस से काहिरा जाते वक्त लापता हुए विमान MS-804 की तलाश के दौरान भूमध्य सागर में मिला है। ये तस्वीरें मिस्र की सेना के प्रवक्ता के फेसबुक पेज पर जारी की गई हैं। हादसे की जांच में जुटे अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि विमान के रडार से गायब होने के करीब 3 मिनट पहले केबिन से धुआं उठता देखा गया था। हालांकि इसकी वजह की जानकारी नहीं हो सकी है। विमानन उद्योग से जुड़ी वेबसाइट एविएशन हेराल्ड के मुताबिक संपर्क टूटने के पहले विमान के टॉयलेट और इलेक्ट्रिक सिस्टम में धुएं का पता चला था। विमान में सवार रहे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवार वालों से मुलाकात के बाद फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क एरो ने कहा, फिलहाल सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है। हम दो चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना और जिन हालात में विमान गायब हुआ उसे लेकर साफगोई बरतना। मिस्र के राजदूत की मौजूदगी में मैंने जोर देकर कहा कि फ्रांस के अधिकारी सच सामने लाना चाहते हैं, सभी परिवारों की ये मांग सही है। ये थे फ्रांस के विदेश मंत्री के शब्द। उधर मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि हादसे को लेकर अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। विमान का मुख्य हिस्सा और दो ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिले हैं। ब्लैक बॉक्स में ही उड़ान से जुड़ा डाटा दर्ज होता है। एविएशन सिक्योरिटी इंटरनेशनल मैगजीन के एडिटर फिलिप बाम ने बीबीसी को बताया कि विमान में तकनीकी दिक्कत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रीस का कहना है कि विमान हादसे के पहले 2 बार तेजी से मुड़ा था और उसके बाद वो 25,000 फुट से ज्यादा नीचे चला गया था। बाद में विमान समुद्र में गिर गया। जांच में जुटे लोग अब विमान के उड़ान रिकॉर्डर की तलाश में जुटे हैं। विमान में सवार रहे लोगों के शव भी अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी याद में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं।
जानकारी दे रहे थे वात्सल्य राय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ लूटपाट और यौन प्रताड़ना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पिछले महीने बस्तर का दौरा करने के बाद आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस आदिवासियों के खिलाफ होने वाली प्रताड़ना की रिपोर्ट और जांच के प्रति गंभीर नहीं है। आयोग ने ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई के समय महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति की भी अनुशंसा की है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बस्तर में आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कथित सामूहिक दुष्कर्म के अलग अलग 13 मामलों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से फरवरी में जानकारी मांगी थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मार्च में फिर से राज्य सरकार को याद दिलाते हुए पत्र लिखा गया, लेकिन राज्य सरकार ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अपनी टीम के साथ पिछले महीने बस्तर का दौरा किया और स्थिति को जाना समझा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में बस्तर में महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दौरा और उनकी रिपोर्ट राहत देने वाली है।
देखिए, अभी तक तो पैदा गेलूर और जो बेलम नेंड्रा या पेद्दापारा में जो भी मामला है, तो इससे पहले तो महिलाएं नहीं कह रही थी। जब उनके साथ इस तरह घटना घट रही है, हो रहा है, तब कह रहे हैं। हम भी जब गए हैं पेद्दा गेलूर, बेलम नेंड्रा, पेद्दापारा, हमको भी ये बात बोला गया, जंगलों में भाग जाते थे क्योंकि अगर घरों में भी रहने से नक्सल के नाम से पकड़ते हैं, नहीं तो मार देते हैं। पर हमारे साथ इस तरह का घटना नहीं घट रही थी, लेकिन अब कर रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं। हम क्यों अपनी इज्जत को इस तरह बताएंगे कि हमारे साथ ये हुआ, हुआ, जब नहीं होगा तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ।
सोनी सोरी ने जिन गांवों का जिक्र किया है, आयोग ने उन गांवों की पीड़िताओं से मुलाकात की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अलग अलग घटनाओं में पुलिस की जांच असंतोषजनक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल के जवान जब गांवों में रुकते हैं तो मारपीट के डर से गाँव के पुरुष गाँवों से भाग जाते हैं और घरों में केवल महिलाएं और बच्चे रह जाते हैं। इसके कारण बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट के आरोप लगते हैं। आयोग ने कहा है कि सुरक्षा बलों को गांवों से दूर रहना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान अगर महिला पुलिस भी साथ रहे तो सुरक्षा बल द्वारा किए जाने वाले यौन अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल, विशेषकर राज्य पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त रसद नहीं दी जाती, जिसके कारण वे अनाज और मुर्गियाँ, बकरियाँ आदिवासियों से छीन लेते हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के जवानों को 600 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है, जबकि केंद्रीय बल के जवानों को 2400 रुपये का भत्ता दिया जाता है। आयोग ने इस स्थिति को भी ठीक किए जाने की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का कहना है कि बस्तर की आदिवासी महिलाओं से जुड़े मामलों की जाँच CID से कराई जानी चाहिए।
अगर जिला पुलिस जाँच करे, अनुसंधान करे, तो शायद ये निष्पक्ष नहीं हो पाए जांच। तो उसके लिए कमीशन ये महसूस करता है कि जांच का काम, अनुसंधान का काम स्टेट CID करे। वो भी और मान भी गए हैं कि स्टेट CID से कराएंगे।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा का कहना है कि आयोग ने जो कुछ कहा है उसकी जांच होगी।
उन क्षेत्र बिहड़ जंगल क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति अप डाउन है, दूर दराज क्षेत्र है, जिसके कारण पुलिस को भी काम करने में परेशानी तो है, इसीलिए बटालियन की संख्या वहाँ बढ़ाया गया ताकि जनता को बीच में हम हमेशा पहुँच सकें, जनता की सुविधा के लिए काम कर सकें। जहाँ भी शिकायतें आएगी उसकी जांच हो रही है, और जहाँ तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से जो जाँच हो रही है उस पर कार्रवाई होगी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चिट्ठियों तक का जवाब नहीं देने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार आयोग की रिपोर्ट और अनुशंसा पर क्या कार्रवाई करेगी, इस पर अभी से कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन यह बात तो सार्वजनिक है कि सुरक्षा बलों से जुड़ी ऐसी कई अनुशंसाएं और रिपोर्ट कई सालों बाद भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब सत्ताधारी गठबंधन में भी आवाजें उठने लगी हैं। गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर उनसे इस्तीफा मांगा है। तस्लीमुद्दीन ही नहीं, RJD के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है। लेकिन सवाल उठता है कि गठबंधन में सहयोगी लालू यादव की पार्टी RJD के नेताओं के बयान सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर चिंता से उपजे हैं या फिर इसकी कोई और राजनीतिक वजह भी है। यही पूछा हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने RJD नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से।
ना कोई मोर्चा नहीं खोला गया है और कोई बैर भाव, द्वेष भाव भी नहीं है, लेकिन एक कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। ये जैसे गया जिला में, नवादा जिला में, सिवान जिला में, और 4-5 घटनाएं ऐसी घटी जिसमें एक पत्रकार की हत्या हो गई, तो इसी पर मामला ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। तेरे भाई विधि व्यवस्था में गिरावट है, तो इसमें खिलाफ के जो लोग हैं बीजेपी वगैरह तो बहुत अनटवंट बयान करते हैं, लेकिन हम लोग का है कि भाई उसको सुधार होना चाहिए, कड़ाई होनी चाहिए, जनता में आत्मविश्वास रहे कि भाई अपराधियों पर सरकार सख्ती बरत रही है। अब इसी को कुछ लोग से बहुत आलोचना हो गई और बहुत शिकायत हो गई, लेकिन हम लोग इसको सकारात्मक पहलू पर करते हैं कि भाई विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
रघुवंश प्रसाद जी, बीजेपी तो जो है जब से चुनाव हो रहे थे तभी से निशाना साध रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो रहा है और अगर आरजेडी सरकार में आती है तो जंगल राज वापस आ जाएगा, तो आरजेडी को जंगल राज से जोड़ा जाता है, तो आप इस तरह की शिकायत किस तरह?
बीजेपी के साथ थे लोग, वो लोग ठीक था, इधर उनका खिलाफ में इधर अलायंस हो गया था, वो पसंद नहीं कर रहे हैं, खिलाफ बोलते हैं, तो स्वाभाविक बात है, तो कौन अजूबा बात है, माने उनके साथ गठबंधन था तो ठीक, इधर गठबंधन खराब, ये तो सब लोग बूझते समझते हैं।
ये थे रघुवंश प्रसाद सिंह। आरजेडी नेता तस्लीमुद्दीन और रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान जेडीयू शासन के खिलाफ हैं, लेकिन जेडीयू इन्हें ज्यादा गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की।
और लालू जी ने भी कुछ नहीं कहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी नहीं कहा, और ये अधिकृत बयान नहीं है, उनके पहले भी इस पर वो लोग कह चुके हैं, इसलिए ऐसे बयानों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैं इसको विश्वस्त आधार पर कह सकता हूँ कि लालू यादव में और नीतीश कुमार में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है और सरकार के काम काज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए जो ये बयान आए हैं इसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, और ये इस गठबंधन पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है, और जनता ने जब भरोसा किया है उस भरोसा को कायम रखने में लालू यादव उतना ही दिलचस्पी रखते हैं जितना नीतीश जी रखते हैं, तो इसलिए गठबंधन चल रहा है, साथ निश्चय सरकारी कार्यक्रम का है वो भी इफेक्टिव ढंग से चल रहा है, और दोनों नेताओं में अंडरस्टैंडिंग है और सरकार ठीक से चल रही है।
लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह और तस्लीमुद्दीन जी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।
जब ये गठबंधन बन रहा था और जब सेप लग रहा था उस समय भी रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत बोलते थे, और रघुवंश प्रसाद सिंह बराबर बोलते हैं, लेकिन तभी तो गठबंधन हुआ, वो तो गठबंधन के भी खिलाफ थे, तो इसलिए वो जो बोलते हैं वो आधिकारिक तौर पर उस वक्तव्य को नहीं लेना चाहिए।
ये थे जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां एक महीने से चल रहा सिंहस्थ कल तीसरे शाही स्नान के साथ संपन्न हो गया। हर 12 साल में एक बार आने वाले सिंहस्थ को मध्य प्रदेश सरकार बेहद कामयाब बता रही है, साथ ही दावा कर रही है कि आखिरी शाही स्नान में ही 1 करोड़ लोग पहुंचे, लेकिन यह सिंहस्थ कुछ विवादों के लिए भी जाना जाएगा। पेश है शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
उज्जैन में चल रहा सिंहस्थ तीसरे शाही स्नान के साथ कल खत्म हो गया। शाही स्नान में विभिन्न अखाड़ों की टोलियों ने सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाई। इस बीच तीसरे शाही स्नान में पिछले शाही स्नान की तुलना में कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन में हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। तीसरे शाही स्नान में पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण उज्जैन की ओर आने वाले मार्गों पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। सैकड़ों श्रद्धालुओं को शिप्रा के घाटों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि आखिरी दिन 1 करोड़ लोगों ने शिप्रा में स्नान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि सिंहस्थ बेहद कामयाब रहा और हर वर्ग ने इसमें सहयोग किया। उन्होंने माना कि सिंहस्थ उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी।
जो सकारात्मक दृष्टिकोण इस आयोजन के पीछे था, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में कुछ भी चीज निकाली जा सकती थी, लेकिन ये मान के कि समाज का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, आस्था का महाकुंभ है, मीडिया ने जो सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में सबका अपना कार्यक्रम ये बन गया, इसलिए इतने ठीक ढंग से संपन्न हो।
लेकिन उज्जैन का सिंहस्थ कई वजहों से विवादों में रहा। मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगे कि उसने सिंहस्थ कुंभ के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। ये पहला मौका था जब सिंहस्थ के दौरान वैचारिक महाकुंभ करके राजनेताओं को इकट्ठा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया। इसी सिंहस्थ में मध्य प्रदेश सरकार दलितों के लिए अलग से स्नान आयोजित करना चाहती थी। माना जा रहा था कि ये स्नान अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, लेकिन विरोध के चलते इससे पीछे हटना पड़ा। वहीं पहली बार इसी सिंहस्थ में किन्नरों का भी अखाड़ा बना। अब अगला सिंहस्थ 2028 को 9 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। शुरहन्याजी, बीबीसी न्यूज, उज्जैन।
सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा पास करने वालों में करीब 89% लड़कियां हैं, जबकि लड़कों का प्रतिशत करीब 79 है। सीबीएसई की परीक्षा में दिल्ली की सुकृति गुप्ता अव्वल रही हैं, जिन्होंने 99.4% अंक हासिल किए हैं, यानी 500 अंकों की परीक्षा में उन्हें 497 अंक मिले हैं। सुकृति अशोक विहार के मॉन्टफोर्ट स्कूल की छात्रा हैं। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने उनसे बात की और पूछा कि इस मकाम को हासिल करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी।
मेहनत ऐसे में क्वांटिफाई नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और रिजल्ट मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान की वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे हूँ। भगवान ने ही मतलब टीचर्स के जरिए से, मेरी फैमिली के जरिए से मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है।
अच्छा, जो बच्चे अब आगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे उनको क्या कहेंगी आप? टॉपर बन गई हैं।
मैं कहूँगी दिमाग ठंडा रखो, अपनी तरफ से मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे।
और आपके आपके घर में क्या माहौल है? माता पिता तो बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं वो?
वो खुश है मुझे कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं क्योंकि कल मेरा पेपर है।
तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है?
हमने सेलिब्रेशन काइंड ऑफ ट्यूजडे के लिए रखा है क्योंकि मेरे अभी तो कंपटीशन वाले पेपर्स ही चल रहे हैं सारे।
आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या था और क्या उसी में आपने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए?
मुझे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मतलब मेरे लिए मतलब सारे सब्जेक्ट मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे लिए इक्वल हैं। तो मेरे लिए कुछ भी ये नहीं था कि ये अच्छा है तो इसमें आने चाहिए, मेरे को सब अच्छे लगते हैं।
इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो स्ट्रेस भी महसूस किया आपने प्रिपरेशन करते हुए?
मैंने स्ट्रेस नहीं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं कभी भी ये सोच के नहीं चली कि मेरे को 100 मार्क्स लाने हैं। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जितने भी मार्क्स आए वो मुझे एक्सेप्टेबल, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनको।
अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी, कितनी पढ़ाई की आपने?
मेरा कुछ भी फिक्स नहीं था, मेरा जिस दिन मन करता था उस दिन मैं 12 घंटे भी पढ़ लेती थी और जिस दिन मन नहीं करता था उस दिन नहीं पढ़ती थी।
अच्छा, आपके आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और उनका रिजल्ट जो आया तो अब वो क्या कहते हैं आपसे?
आई डोंट नो, वो बस कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, तेरा अच्छा रिजल्ट आया स्कूल।
आपकी टीचर से बातचीत हुई? आपके टीचर्स बहुत खुश होंगे आपके रिजल्ट से?
हाँ, मेरे को मेरी सारी टीचर्स का फोन आया और सबने मुझे मैसेज किया और मतलब मैं अपने टीचर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से हूँ मैं जहाँ पे भी हूँ।
अब आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आप?
मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, बट देन उसके आगे का मैंने नहीं सोचा है क्योंकि ज्यादा प्लानिंग करने से फायदा नहीं होता, जो उस समय ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी।
ये थी सीबीएसई की 12वीं की टॉपर सुकृति गुप्ता। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है, ये जानते हैं वात्सल्य राय से, जो तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं। जी वात्सल्य
जी। अमरीश जी, जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईरान जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको अपनी लीड खबर बनाया है और बताया है कि ईरान का जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो भारत के लिहाज से कितना अहम है, और इसमें हेडिंग लगाया है इंडिया बेट टू वार्म अप ईरान एज एट स्टेप्स आउट ऑफ कोल्ड, यानी ईरान जो है मुश्किल भरे दौर से बाहर आ गया है और भारत उसमें क्या कुछ हासिल कर सकता है अपने लिए। इसके अलावा जो सीबीएसई, जिनका अभी आप सुकृति गुप्ता का इंटरव्यू सुना रहे थे, ये जो रिजल्ट कल 12वीं कक्षा के आए थे, ज़्यादातर अखबारों ने इस खबर को अपनी लीड खबर बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें आप, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें या हिंदी अखबारों की बात करें, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, सबकी लीड यही है। नवभारत टाइम्स ने हेडिंग दिया है तीनों टॉपर लड़कियाँ, मतलब जो टॉपर फर्स्ट थ्री हैं वो तीनों लड़कियां हैं। और आप देख सकते हैं कि सुकृति की तस्वीर उनकी माताजी के साथ सारे अखबारों ने पहले पन्ने पर इसको जगह दी है। इसके अलावा नीट को लेकर केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है जिसमें एक साल के लिए राज्य बोर्डों को कहा गया है कि वो नीट के दायरे से बाहर हो जाएंगे, उस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानूनी राय मांगी है। दैनिक जागरण ने इसको अपनी लीड खबर बनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एप्पल के सीईओ टिम कुक से मुलाकात की थी। ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर तस्वीर छापी है इस मुलाकात की। द हिंदू ने इसको अपनी लीड खबर बनाया है और बताया है, हिंदुस्तान टाइम्स की भी यही खबर पहले पन्ने पर है और उसमें बताया है कि मोदी चाहते हैं कि एप्पल भारत में आईफोन बनाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र के एक मंत्री पर कि वो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में थे। द हिंदू ने इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। हाल में जो 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं उनकी समीक्षा का दौर भी जारी है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को दिया है। और कल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लिए कोई पराजय आखिरी नहीं है, हताश न हो कार्यकर्ता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार सुन लेते हैं।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में जारी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरीकॉम कल दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई। इस हार के साथ ही उनके रियो ओलंपिक में जाने का सपना भी टूट गया। 51 किलो भार वर्ग में एमसी मैरीकॉम का सामना जर्मनी की अजीजी निमानी से था। दूसरे दौर के इस मुकाबले में निमानी ने मैरीकॉम को 2-0 से मात दी। 5 बार के विश्व चैंपियन मैरीकॉम निमानी के सुरक्षा किले को भेद नहीं सकी। रियो ओलंपिक के लिए जगह बनाने के लिए ये महिलाओं का आखिरी मुक्केबाजी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। मैरीकॉम के अलावा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की एल सरिता देवी भी डेनमार्क की यवोने रासमुसेन से 2-0 से हार गई। उधर इंग्लैंड ने लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कल श्रीलंका को तीसरे ही दिन एक पारी और 88 रन से मात दी। पहली पारी के आधार पर 207 रनों से पिछड़कर फॉलो ऑन का सामना करते हुए श्रीलंका की दूसरी पारी भी केवल 119 रनों पर ढह गई। कुशल मेंडिस ने 53 रन बनाए लेकिन बाकी बल्लेबाज जेम्स एंडरसन और स्टीव फिन की गेंदों का सामना नहीं कर सके। एंडरसन ने 29 रन देकर 5 और फिन ने 26 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं आईपीएल 9 के पहले मुकाबले में कल महेंद्र सिंह धोनी के आतिशी नाबाद 64 रनों की मदद से राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से मात दी। पुणे ने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य आखिरी गेंद पर हासिल किया। एक समय 19 ओवर में पुणे का स्कोर 6 विकेट खोकर 150 रन था। ऐसे में धोनी ने अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बनाए। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुरली विजय के 59 और गुरकीरत सिंह के 59 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए। कल ही आईपीएल में खेले गए दूसरे मुकाबले में कानपुर में गुजरात के लायंस छा गए और उन्होंने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से मात दी। गुजरात के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था जो उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 48 और कप्तान सुरेश रैना ने 58 रन बनाए। इसके साथ ही 18 अंकों के साथ गुजरात ने पहले क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीतीश राणा के 70 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 172 रन बनाए। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दिल्ली डेयर डेविल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी सेना के अधिकारियों का कहना है कि अफगान तालिबान के नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की अमरीकी हवाई हमले में मारे जाने की संभावना है। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को हुए विमान हादसे को लेकर अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। इजिप्ट एयर का विमान पेरिस से काहिरा जाते वक्त भूमध्य सागर में गिर गया था। हादसे में 66 लोगों की मौत हो गई थी। सोमालिया की सरकार ने चरमपंथी संगठन अल शबाब के खिलाफ अमरीका के ड्रोन हमले का समर्थन किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ईरान की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही नमस्कार भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।